الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں چند دن سے ماں باپ کی حقوق پورا کرنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کو تکلیف نہ پہنچانے پر بات ہو رہی ہے. ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پر بچھا دو ان کے لیے. تو ظاہر انسان کے پر نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے، یعنی ہم ہر وقت خادمانہ طور پر حاضر ہوں کہ اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم اس کو پورا کریں. اصل میں اللہ جل شانہ دلوں کے مالک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، سارے کام کرنے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے جو حقوق ہمارے ذمہ رکھے ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھنا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تفصیلات ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت ہوشیاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس وقت اپنا عقل نہ لڑائیں، بلکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ اس سے مطلب کیا نکلتا ہے، لیکن وہ بھی سلیم قلب کے ساتھ، کہ اس میں کوئی زیغ نہ ہو، کوئی مطلب یعنی نافرمانی کا عنصر نہ ہو. تو اس کے ذریعے سے اگر ہم حق تک پہنچے تو اس میں اگر غلطی بھی ہو تو وہ معاف ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ پاک کی طرف متوجہ رکھیں اور ذہن کو اس کے مطابق استعمال کریں، اور اپنے نفس کو ہر مسئلے میں قابو رکھیں کہ اس کے کسی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے انجام کو کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، مطلب یہ نقصان نہ ہو. تو یہ مسئلہ یہاں پر بھی ہے. بہت سارے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، اس اختلافی صورت میں انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. اس وجہ سے انسان بعض دفعہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے کہ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، ایسی بات ہے. لیکن یہاں پر بہت زیادہ تفصیلی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر صاف صاف بات ہے، دو ٹوک بات ہے، اس کے اندر کسی اور مسئلے کی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ یہ کہ ایک ہے اللہ پاک کے لائے ہوئے دین، لائے ہوا دین، اور ایک ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ برتنے کا تعلق، جس کو ہم دنیائی معاملات عموماً کہتے ہیں، دنیائی معاملات جس کو ہم کہتے ہیں. دنیائی معاملات میں اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں ہو رہی ہو تو اس میں ان کی پوری پوری رعایت کیا جائے، یعنی یہ بات ہے. دنیائی معاملات میں مثلا کیا ہے، مجھے پانی دے دو، تو اس میں اللہ پاک نے کبھی نہیں روکا. اگر کہہ دے مجھے شراب دے دو، اس سے اللہ نے روکا ہے، وہ نہ دو. ہاں جی، اگر وہ کہتے جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دو، اگر آپ کے پاس ہیں تو دے دینا، اور اگر نہیں ہے تو عذر کر لینا، اور اگر کہتے کہ نہیں بے شک سود کے ہوں، بے شک رشوت کے ہوں، اس وقت عمل نہ کرنا. صاف صاف باتیں، مطلب اس میں کون سی مطلب مشکل بات ہے جس پہ یعنی سوچنا پڑ جائے اور یہ کیا ہوئی، یہ بالکل دیکھیے بات ہے کہ اس وقت مطلب یہ ہے کہ جیسے لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی والدین کی، اپنے والدین کی، تو اس میں یہی بات ہی نا کہ کوئی ایسی بات کر لے جو اللہ پاک کی نافرمانی کی ہو تو اس کو نہ کرے، ورنہ لیکن ان کے ساتھ ویسے بہت اچھے تعلق رکھنا. مطلب یہ ہے کہ وہی دنیائی معاملات جس کو میں نے کہا، جس میں اللہ جل شانہ نے روکا نہیں ہے، ہاں جی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. अब इसमें ये वाली बात भी आ जाती है कि अगर मिसाल के तौर पर वो कोई ऐसी बात कर ले जैसे शराब मना है, तो इस तरह किसी पर जुल्म करना भी मना है, यानी जुल्म करना भी मना, अल्लाह ने रोका हुआ है। तो अब अगर अपने वो अब कह दे कि अपने बीवी पर जुल्म करो, तो चूंकि इसको भी अल्लाह ने रोका है, तो उनके लिए हम ये काम नहीं कर सकेंगे। हाँ, इस वक्त अपने आप को बड़ी होशियारी के साथ कि इनका दिल भी ना टूटे, कम अज़ कम हमारी तरफ से कोशिश होगी कि इनका दिल भी ना टूटे और हम किसी पर जुल्म भी ना करें। अब ये क्या करना है, ये अल्लाह ताला ने अकल इसी चीज़ के लिए दिए कि हम लोग मतलब ये नहीं कि ऐसे कर ले। इस वक्त तोरिया की भी गुंजाइश होती है। तोरिया इसको कहते हैं कि जैसे दो बात, एक चीज़ के दो माने हो, आपने एक माना जहन में रख लिया और दूसरे के सामने दूसरा माना ज़्यादा वो रखा, तो उससे जो ना उससे वो मतलब ले लिया, तो आप जुर्म नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ एक गलत चीज़ से बचने के लिए या अपने आप को नुकसान से बचने के लिए आपने ऐसा कर लिया। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मौलाना कासिम नानुत्तवी रहमतुल्लाह अलैह, ये 3 दिन तो मतलब जो है ना वो रुपोश रहे, फिर इसके बाद बाहर आ गए, तो लोगों ने कहा हजरत आपके पीछे वारंट तो है, हाँ जी मतलब गिरफ्तारी का वारंट है। फरमाया 3 दिन तो मैंने आप सल्लम की सुन्नत को पूरा करने के लिए रुपोशी इख्तियार की थी, बाकी तो अल्लाह मालिक है। हाँ जी, तो बाहर आते थे तो मस्जिद में बैठे हुए थे तो पुलिस वाले आ गए, वो हजरत को जानते नहीं थे। हजरत का पोशाक जो था वो बिल्कुल सादा होता था, यानी उसमें ये नज़र नहीं आता था कि कोई बड़े बड़े आलम थे, बड़े आलम है, बस बिल्कुल सादा देवबंद और जन उस पगड़ी, वो कोई ख़ास मतलब वो निशान उलमा के नज़र नहीं आती थी। इस वजह से उन्हें पूछ पहचाने नहीं और पूछा हजरत से कि मौलाना कासिम किधर है, तो हजरत 2 कदम पीछे हो गए और जहाँ पहले थे उसी तरफ इशारे किया कि अभी तो यहाँ थे। हाँ जी, तो बात बिल्कुल सही थी, लेकिन उनने उससे ये मुराद ले लिया कि ये जो है ना मतलब ये तो अब वहाँ नहीं है, और हजरत ने जो बात की अपने लिहाज से इस तरह की, यकीनन इसके लिए भी अकल की ज़रूरत है। बगैर अकल के तो इंसान नहीं कर सकता इस तरह। तो वो लोग एक दरवाजे से निकल गए, हजरत दूसरे दरवाजे से निकल गए, बस बात ख़त्म हो गई। तो ये मतलब ये कोई इस किस्म की जो बात हो, इसमें माशाल्लाह बीवी का ख्याल भी रखा जाए इस तौरिया के अंदाज में, और वालदा का भी ख्याल रखा जाए इस तौरिया के अंदाज में, ना बीवी के कहने पर वालदा पे जुल्म करे, उनके हुकूक कम करे, और ना जो है ना मतलब है कि वालदा के लिए बीवी पर जुल्म किया जाए और उनके हुकूक को कम किया जाए। दोनों नाजुक लोग हैं, नाजुक लोग से मुराद ये कि यानी जो जिसको कहते हैं नाकिसुल अक्ल है, हाँ जी, और कजी इनकी फितरत में है, लिहाजा इनके साथ इस तरह ताल्लुक़ रखा जाए कि जैसे टूटे तो ना, लेकिन इनके कजी से हम भी मुतासर ना हो, मतलब ये वाली बात है। तो इस तरीके से मतलब अगर हम ज़िंदगी गुजारे तो उसमें, और बाकी ये कि बहुत मोहब्बत का मामला, बिलखुसूस माँ के साथ बहुत मोहब्बत का मामला हो, और वालिद का फरमाबरदारी ज़्यादा हो। ये भी इसलिए कह रहा हूँ कि वालदा चूंकि जज्बाती होती है, इसके साथ और जज्बात का जब जवाब जज्बात से देना चाहिए तो मोहब्बत, हाँ जी, और वालिद मर्द होने के लिहाज से ज़्यादा अकल वाले होते हैं, तो उसका जवाब यही है कि फिर उस पर अमल किया जाए, मतलब उनकी बातों, क्योंकि उनकी बात नस्बतन यानी वो, और ज़ाहिर है चूँकि हम मानना दुनिया के लिहाज से, दीन के लिहाज से तो बात ही नहीं, दीन के लिहाज से तो मुफ्ती की माननी होती है या तरबियत के लिए शेख की माननी होती है, हाँ जी, लेकिन ये है कि कम अज़ कम दुनिया की जो दुनिया के मामलात है। अब मैं एक बात अर्ज़ करता रहता हूँ, वैसे है तो बड़ी अजीब बात, लेकिन मैं मजबूरन अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त चूंकि मिक्स हो गई हैं चीज़ें, मुफ्ती से तरबियत करवाई जाती है और शेख से मसला पूछा जाता है, हालांकि दोनों गलत है। हाँ, अगर एक शेख मुफ्ती भी हो तो फिर तो ठीक है, और अगर वो एक मुफ्ती शेख भी हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुफ्ती को मुफ्ती का रोल करना तय करना चाहिए, शेख को शेख का रोल तय करना चाहिए, वालिद को वालिद का रोल तय करना चाहिए। तो मुझे एक वाक्य मालूम है, हमारे एक साथी है, बहुत ही मजाकिया है, तो वो मजाक बहुत करता है, उनके वालिद साहब भी इसी किस्म के मजाकिया थे। तो वालिद ने उससे कहा कि ये क्या चीज़, मतलब मसला पूछा, तो उनने कहा कि हजरत आप मतलब ये है कि आप चूंकि एक आलिम से मसला पूछ रहे हैं तो आलिम के शान का ख्याल रखें, आप बावजू रहें और तहियात के शक्ल में बैठ कर कहें कि हजरत इस मसले में क्या करना चाहिए, तो आपको फिर जवाब मिल जाएगा। तो उनके वालिद साहब भी ऐसे ही थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से उनने किया, वजू में तो तय हाँ, और वो जैन मल्ले के तहियात के शक्ल में बैठ के बड़े ही उससे जैन मल्ले आजिज़ाना अंदाज में पूछा कि जी हज़रत इस मसले में क्या कह रहे हैं, तो उनने जवाब दिया, फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर लिया। तो उन्हें कहा क्यों, उन्हें कहा बाप की हैसियत से पहले मैंने साहिल की हैसियत से बात की, ठीक है वो आपका हक था, और फिर मैंने बाप की हैसियत से तुझे एक थप्पड़ मारा है तो ये मेरा हक था। तो मतलब ये है कि ये हर एक का अपना अपना, वो तो चूंकि दोनों माशाल्लाह यानी इस मसले में फ्री थे, कोई मसला मसला है नहीं है, उन्हें बेदबी के लिए नहीं किया था। तो लेकिन बहरहाल ये है कि ये चीज़ है कि वालिद को वालिद के लिहाज से, माँ को माँ के लिहाज से, बीवी को बीवी के लिहाज से, भाई को भाई के लिहाज से, बहन को बहन के लिहाज से, बच्चों को बच्चों के लिहाज से अपना अपना हिस्सा दो, ये तरीक़ेकार है। वरना सिर्फ एक तरफ होकर ये बातें मैं क्यों करता हूँ, इस वजह से मैं करता हूँ कि आजकल अफरात तफरीत आम है, आजकल अफरात तफरीत आम है, कुछ लोग जालिम हैं, वो बीवी के लिए अपने बाप माँ बाप पर जुल्म करते हैं, कुछ माँ बाप जालिम हैं और अपने बेटे के जरिए से उनके बीवियों पर जुल्म कराते हैं, और ये चीज़ आजकल बहुत आम है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको यानी कोई इनकार कर सके, ये मामला बहुत ज़्यादा आम है। तो अब उसमें बात यह है कि शरीयत के मुताबिक ही चलना है ना, तो शरीयत ने हर एक के हुकूक दिए और हर एक के हुकूक का ख्याल रखना होगा। तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान का अंदाज़ भी तरीका भी ये है कि दोजख का जिक्र करते हैं तो साथ साथ जन्नत का भी करते हैं, और जन्नत का जिक्र करते हैं तो साथ साथ दोजख का जिक्र भी करते हैं, अच्छे लोग का जो जिक्र करते हैं तो साथ साथ बुरों का भी जिक्र हो जाता है, और बुरों का जिक्र करते हैं तो साथ साथ अच्छों का जिक्र भी हो जाता है, ये कुरान का अंदाज है। तो इसका मतलब यह है कि और हम लोग चूंकि जज्बात में होते हैं, हम किसी एक साइड पे हो जाते हैं, हम सिर्फ एक रुख को लेते हैं, तो वो एक रुख वाली बात हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें हर वक्त जो है ना मतलब है कि तैयार रहना चाहिए कि शरीयत का जो हक जिसका है, मतलब यह है कि इसमें हमने कोई सरफा नहीं छोड़ना, हमें बात को तहकीक तक पहुंचानी है। माँ की मोहब्बत सुभान अल्लाह, इसका कोई जवाब नहीं, और वालिद की फरमाबरदारी इसमें कोई शक नहीं, और बच्चों की परवरिश और उनके हुकूक का ख्याल रखना, बिलखुसूस नाबालिगों का, तो इसका तो ज़ाहिर मतलब है ज़रूरत का से कोई इनकार नहीं कर सकता, और बीवी जो रफ़ीक हयात होती है उसकी जो ज़रूरत है और उसकी जो ज़रूरत है इसके लिए इंसाफ के तकाजे को पूरा करना, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ जी, ये बात। और एक बात मैं और भी अर्ज़ करता हूँ, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये मोहब्बत और मोहद्दत का रिश्ता है। अब मोहब्बत और मोहद्दत हमारे मुआशरे में बाहर के लोगों के लिए तो लोगों ने जायज़ रखा है, लेकिन मियाँ बीवी जब आपस में मोहब्बत करते हैं तो उस पर लोग नाराज़ हो जाते हैं, खुदा के बंदे उस पर तो खुश हो जाओ, इसी के लिए तो रिश्ता किया जाता है, ये इसीलिए तो होता है कि मोहब्बत और मोहद्दत हो, तो मोहब्बत और मोहद्दत पे नाराजगी की क्या बात है। हाँ, गलत उसमें भी नहीं होना चाहिए, मोहब्बत और मोहब्बत जैसे माँ की मोहब्बत में गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह मियाँ बीवी की मोहब्बत में भी गलती नहीं होनी चाहिए, सब शरीयत के मुताबिक होने चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता, आपको भी। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।